हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका पेश हैं समाचार। आज दिन शुक्रवार तारीख 6 जून 2025। कनाडा के प्रेरी से लगी जंगल की आग से निकलने वाले धुएं के कारण ग्रेटर मॉन्ट्रियल क्षेत्र में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब हो रही है और विजिबिलिटी कम हो रही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कनाडा ने एक विशेष एयर क्वालिटी वक्तव्य जारी किया है जो शनिवार तक प्रभावी रह सकता है। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे धुएं का स्तर बढ़ रहा है स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ता जाएगा, इसलिए बाहर जाने के समय को सीमित करें। बाहर के खेल गतिविधियों और कार्यक्रमों को कम करने पर या रिस्केड्यूल करने पर विचार करें। वायु प्रदूषण से जटिलताओं से पीड़ित होने वाले या 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को बाहर काम करने में कंट्रोल करें। इसमें यह बताया है कि जो लक्षण इसमें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वे आंख और नाक और गले में जलन, सरदर्द या हल्की खांसी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्लिमफ्लॉन क्षेत्र के पास लगी जंगल की आग इतनी बड़ी है कि ये इस समय मैनिटोबा और सस्केचवान दोनों में जल रही है। एलेक्स कार्पा के पास उन्होंने कहा है कि इसमें कंट्रोल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इधर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कनाडा ने यह भी सलाह दी है कि खिड़कियां और दरवाजे यथासंभव बंद रखे जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रमाणित पोर्टेबल एयर क्लीनर का इस्तेमाल करें जो महीन कणों को फिल्टर कर सकता है। बाहर जाने की स्थिति में आप किसी अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को, जिसका अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन से संबंध था, इसने मॉन्ट्रियल में कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को मारने की धमकी दी थी। न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 51 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल्ला वारसामे पर 26 मई को हुई एक घटना के बाद आपराधिक संहिता के तहत मौत या फिर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का एक मामला चल रहा है। सोमालिया में जन्मे इस कनेडियन सिटीजन वारसा में, जब होमलेस हैं, इनको RCMP ने बुधवार को गिरफ्तार किया जब उन्होंने कथित तौर पर ओल्ड ब्रिडी मिशन के कर्मचारी से कहा कि वे बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते हैं ताकि वे विस्फोटक बनाने में सक्षम हैं। SPVM ने मिशन को जवाब दिया और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद में RCMP को भी कांटेक्ट किया और साथ ही सुरक्षा प्रवर्तन टीम INSET को यह मामला सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनकी जांच अब भी जारी है। वारसामे को कल मॉन्ट्रियल कोर्ट हाउस में पेश किया गया था और आज उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस बीच उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए अस्पताल भी भेजा गया। स्प्रिंग क्लीनिंग के बाद और घर के बदलने के मौसम के साथ साथ कुछ क्यूबेक चैरिटी का कहना है कि उन्होंने सड़क के किनारे डोनेशन बॉक्सेस ऐसी चीज़ों से भर रहे हैं जिन्हें दोबारा नहीं बेचा जा सकता। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि डब्बे भर जाते हैं तो कपड़े और अन्य सामान कंटेनर के बगल में छोड़ दिए जाते हैं और कभी कभी ये चोरी भी हो जाते हैं। इसके अलावा संगठनों का कहना है कि हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इन साइटों का उपयोग उन चीज़ों को फेंकने के लिए ना करें जिन्हें वे किसी और को नहीं दे सकते हैं। रेनेसा सॉर्टिंग सेंटर में दान आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग ऐसी चीज़ों को डोनेट करते हैं जिन्हें 50% तक दोबारा नहीं बेचा जा सकता। दान के डिब्बे के बाहर या ऊपर से कुछ और दूर छोड़े गए कपड़े अक्सर अनुपयोगी होते हैं। संगठन लोगों से ये कह रहे हैं कि वे अपना दान सीधे कूड़ेदान में डालें या फिर किसी केंद्र पर जाएं। इधर 2023 में रेनेसा का कहना है कि उन्होंने लैंडफिल से 30,000 टन सामग्री हटाई और 2030 तक वे इस आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक आयुक्त PBC ने गुरुवार दोपहर को घोषणा की कि उन्होंने SAAQ क्लिक IT परियोजना की जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने क्यूबेक के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में संभावित गड़बड़ी के संबंध में फरवरी 2025 के अंत में जाँच शुरू की है। इसके लिए प्रासंगिक जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से CLCC वेबसाइट पर फॉर्म भरने और संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि वे चल रही जांच के बारे में कोई विवरण नहीं देंगे। CLCC एक पुलिस बल है जिसका मिशन राज्य की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र में करप्शन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कार्यों को कोऑर्डिनेट करना है। आपको ये बता दें कि लागत में $500 मिलियन की बढ़ोतरी पिछली फरवरी में प्रकाशित ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार SAAQ की डिजिटल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट की लागत 2027 तक कम से कम 1.1 बिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो अपेक्षा से 500 मिलियन डॉलर अधिक है। इस बीच कुछ अन्य समाचारों में, एसटीएम के रखरखाव कर्मचारियों ने 9 से 17 जून तक की हड़ताल करने की उम्मीद की है, जिससे पूरे मॉन्ट्रियल आइलैंड में यातायात प्रभावित हो सकता है। एसटीएम ने कहा है कि स्कूल रूट और नियोजित सैर के लिए शटल बसेस हमेशा की तरह चलेंगी। 9 से 11 जून के बीच बसें केवल बिजी आवर्स के दौरान यानी सुबह 6:15 से दोपहर 9:15 तक और शाम 3 से शाम 6 बजे तक और रात को 11:15 से रात 1:15 तक, इन घंटों के बाहर कोई बस सेवा नहीं दी जाएगी। मेट्रो सेवा केवल सुबह 6:30 से लेकर 9:38 तक, दोपहर में 2:45 से शाम 5:48 तक और रात को 11 से 1 बजे तक चलेगी। एसटीएम का कहना है कि 12, 16 जून और 1 जुलाई को भी वे 50% क्षमता पर ही काम करेंगे। मेट्रो सेवा सामान्य आवृत्ति से आधी चलेगी और लगभग आधी बस सेवाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। 16 और 17 जून को हड़ताल फिर से लागू होगी और इस बीच 13 से 15 जून के बीच नियमित सेवाएं लाई जाएंगी। इधर कुछ स्कूल बोर्डों का कहना है कि वे अपने परीक्षा के कार्यक्रमों को इसमें एडजस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने ये कहा है कि अगले सप्ताह शुरू होने वाली सभी अंतिम परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही स्कूल बोर्ड और केंद्रों ने कहा है कि वे हड़ताल के दिनों में परीक्षाओं के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं करेंगे। ईएमएसबी ने एसटीएम शेड्यूल के साथ पेरेंट्स को एक नोट भेजा है, जहां उन्होंने कहा है कि छात्रों को सभी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना चाहिए। हाल ही में कूटनीतिक और व्यापार तनाव के बीच एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को एक शीर्ष चाइनीज ऑफिशियल के साथ बातचीत करने के बाद कनाडा और चीन के बीच कम्युनिकेशंस के चैनल को नियमित करने पर सहमति व्यक्त की। गुरुवार देर रात जारी पीएमओ के एक वक्तव्य के अनुसार कार्नी और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने फेंटेनाइल संकट को दूर करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्नी ने कृषि और कृषि खाद्य उत्पादों, जिसमें कनोला और समुद्री भोजन शामिल हैं, इसके साथ साथ अन्य मुद्दों को के लिए भी बात करने का एक अवसर लिया। पिछले अक्टूबर में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के तहत कनाडा ने अमेरिका के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए चाइनीज इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगाया था, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट पर अनिश्चित रूप से कम कीमतों पर ईवी निर्यात करके ग्लोबल ट्रेड को विकृत करने का आरोप लगाया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने आज कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पूर्व सहयोगी एलन मस्क से बात करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के व्यापक कर कटौती विधेयक से दोनों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। उन्होंने कहा दोनों के बीच कोई फोन कॉल की योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि ट्रंप और मस्क आज एक दूसरे से बात करने वाले हैं। मस्क ने कहा है कि उनकी मदद के बिना ट्रंप हार जाते और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके अनुबंधों को खत्म करने की धमकी दी है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने गुरुवार को एक असाधारण खुली एक लड़ाई लड़ी। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हमसफर से।